तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का टॉपिक किसी हद तक पूरा हुआ। अब हम शुरू करेंगे ज़कात। नोट कीजिएगा, ज़कात क्या है? अपने माल को पाक करने की गरज से जो चीज़ निकालें वो ज़कात है। और इस्लाम के पांच बुनियादी अरकान जिसको पिलर्स ऑफ इस्लाम कहा जाता है उनमें से एक रुकन है। और अगर इसका जानबूझ के कोई इनकार करे कि मैं नहीं मानता कि ज़कात इस्लाम में है, तो वो वाजिबुल कत्ल होगा मुर्तद होने की सूरत में, यानी उसको मुर्तद समझा जाएगा, यानी मीन के ही लेफ्ट द इस्लाम। क्या ज़कात फ़र्ज़ है? बिल्कुल फ़र्ज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह की तरफ से आयत करदा ये एक फरीज़ है। इसकी दलील सूरत बकरा आयत 43 और मुस्लिम 111। ज़कात फ़र्ज़ कब हुई थी? इसी में लिख लीजिए 2 हिजरी को, यानी ये भी मदीना में आने के बाद रखा गया। और याद रखिए कि ज़कात है क्या। असल बात यह ना कि ज़कात जो है ना, दिल से माल की मोहब्बत को निकालना है। दो लफ्ज़ लिख लीजिए, ज़का यस्की तस्किया। नंबर एक, पाक करना। जब ज़कात निकल जाती है ना, तो बाकी माल पाक हो जाता है गंदगी से, अलाइशों से। थोड़ा सा इसकी रूह को समझेंगे, ये पहले वाले ब्लॉक में लिखेंगे सब कुछ। देखिए ज़रा सा समझें, पूरी कोशिश भी करके, हलाल कमाने की पूरी ख्वाहिश के बावजूद भी हमारे मर्दों, हमारे भाइयों, बेटों, शोहरों के माल में हो सकता है कहीं से कोई अलाइश आ जाए, कुछ जम आ जाता है। पानी ये साफ है, मेरे सामने रखा हुआ है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप में डालेंगे तो इसमें कितने जर्म्स हैं, फिर भी मैं पी रही हूँ। बात समझ गए ना? इसी तरह कुरान और सुन्नत के लेंस से जब देखें तो कमाई में कहीं ना कहीं, अगर कह लीजिए कि शुबा नहीं भी है ना, तो एक अंदेशा तो हो सकता है ना। जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्ला के बाप के बारे में आता है कि वो कहते थे कि क़यामत के दिन मेरे माल में एक दिरहम भी मुश्तबे नहीं होगा। और इसी का असर था कि औलादें कैसी बनी। याद रखिए कि जब माल में कुछ अलाइश आती है ना, तो औलाद में बिगाड़ आ जाता है, इल्ला माशाल्लाह। तो ज़कात की पहली सेंस समझ गए कि ज़कात क्या है, कि आपकी तरफ से वांटेडली और अनवांटेडली। याद रखिए, इसे ये नहीं मतलब कि आप हराम जान के कमाएं और ज़कात देते जाएं। वांटेडली नहीं, अनवांटेडली, पेरेंटली और अनअपेरेंटली, जानते बूझते अनजाने में कोई भूल चूक। याद रखिए, ज़कात हराम को पाक नहीं करती। ये बड़ा बड़ा लिख लें, कड़वा तरीन जुमला होगा शायद इस टॉपिक का। ज़कात हराम माल को पाक नहीं करती, हलाल माल में जो अलाइशें, जो कमियां कोताहियां हो गईं, उसका अल्लाह की रहमत से कफारा होता है। और दूसरी बात है कि ज़कात पाक किससे किसको करती है? दिल से माल की मोहब्बत को निकाल देती है, यानी दिल पाक हो जाता है किससे? माल से। बुखल और कंजूसी निकल जाती है। तो पहली चीज़ ज़रा समझ रहे हैं ना, अभी दो मानी है ज़कात के, पाक होना। क्या पाक होना? दो तीन चीज़ें देख ली, फिर देखिए बाकी माल पाक हो जाता है। जैसे गंदी चीज़ हटा दें तो बाकी साफ़ रहती है, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं गरीब लोगों की, फ़कीरों की, सोशल वेलफेयर के काम होने लगते हैं। और जिसको ज़कात का माल मिलता है उसकी दुआएं आपको मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा मानी भी है ज़कात का, और वो है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी क्या होती है? नरिशमेंट। आप देखिए कि अल्लाह ना करे जिस्म में कोई बीमारी, लिवर प्रॉब्लम है, उसकी ग्रोथ हो जाती है अबंडेंस के मानों में। पहला क्या था? टू प्योरीफाई के मानों में। दूसरा क्या है? टू इन्हेंस, टू इंक्रीज। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर बॉडी में कोई डिजीज़ हो, लिवर प्रॉब्लम है, जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं अपने ब्लड नहीं बन रहा, या जिस्म के अंदर वो ग्रोथ नहीं हो रही जो होनी चाहिए, फिक्र लगती। बच्चा सब सही खाए पिए लेकिन बढ़ नहीं रहा, फिक्र होगी ना। तो ज़कात का एक दूसरा मानी क्या है? फ्लरिशमेंट। आप जिस्म से कुछ चीज़ों को निकालें, बस आपने कभी देखा होगा गंदा खून जिस्म से निकाल दें तो सेहत हो जाती है। जिस्म में कभी कभी ऑपरेट करवा कर कोई ना कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, कोई ऑर्गन ख़राब हो गया, उसको निकालना पड़ता है, तो बाकी ऑर्गन्स फिर काम करने लगते हैं। तो क्या पता चला? ज़कात देने से माल क्यों बढ़ता है? इम्प्योरिटीज़ निकल गई। सवाल पैदा होता है कि हिकमत क्या है? अल्लाह ने ज़कात को क्यों रखा? ताकि नंबर एक, दौलत फैलती रहे, जिसको आप इस्लाम में जो एक बड़ी मारूफ़ इस्तिलाह है, चंद लोगों के हाथ में माल ना रहे। आप कह लीजिए कि दिस इज द नेचुरल फिनोमिनन किस चीज का, कि माल सारे मुआशरे में सर्कुलेट करें। इसको भी समझ लीजिए, देखिए मनी इज इक्वल टू ब्लड, ये लिखें, एग्जाम्पल लिखेंगे, जिनको मेडिकल नहीं भी कुछ पढ़ने का मौका मिला उनको भी समझ आएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, सारे जिस्म के अंदर सर्कुलेशन, गंदे सेल्स उठाता जाता है ब्लड, ठीक है, और दूसरी तरफ से साफ खून में जो ग्लूकोज मिला होता है वो बॉडी को देता जाता है, यही काम है ना। यानी एक तरफ से स्वीपर भी है ब्लड, जिसमें में जहाँ से ब्लड गुजरता है वहाँ कोई मेटाबॉलिज्म हुई, कुछ टूट फूट हुई वो उठा लेता है। इस तरह जो खाने के बाद हमें विटामिन्स और जो भी मिलती है एनर्जी वो जिस्म को देता है। एग्जैक्टली मनी हैज़ द सेम रोल इन सोसाइटी। इस्लाम चाहता है लो और दो। अगर आपका माल इधर से उधर, उससे उधर जाए, फ्लक्चुएशन हो रही, इधर से उधर जा रहा है, दिस इज़ द पर्पस, अमीरों से गरीबों को, गरीबों से उसको, आपकी चीज़ दूसरे के पैसे, उस पैसों से वो तीसरी चीज़ लेता है। बस आप देखिए कि एक किसान से प्रोसेस शुरू होता है ना, वो समझे कि 1,000 रुपये का बीज खरीदता है, ज़मीन में डाल देता है, फिर उस ज़मीन में डालने से पहले उसको हल खरीदना है, तो हल बनाने वाला जो कंपनी है उसको पैसा मिलेगा, फिर उसको एक मजदूर को हायर करना है जो हल को चलाएगा, तीसरे बंदे को उसमें फ़ायदा हो गया, फिर वो जब माल ज़मीन से उठता है तो उसको कुछ लोगों की ज़रूरत है जो उसको पानी दें, लोगों को वहाँ रोज़गार मिलेगा, फिर हार्वेस्टिंग होगी, मशीनें चाहिए, मशीनों वालों को फ़ायदा होगा, फिर उसके बाद वो फसल कटेगी तो बोरियों में रख कर मजदूर दूसरी जगह ले जाएंगे, वहाँ से वो शहर पहुँचेगा, गोदामों में जाएगा, वहाँ से सारे शहर के ग्रोसरी स्टोर्स पे वो आटा पहुँचेगा, फिर पिसेगा। यानी सिर्फ एक मजदूर ने एक बीज ज़मीन में डाला तो 25-30 लोगों को सोर्सेज ऑफ इनकम मिल गए। दिस इज द सेम थिंग इस्लाम वॉन्ट्स। अब अगर इस पैसे को जो आपके पास है रखते जाएं, जमा छुपा के करते जाएं, तो 20-25 लोग जो हैं वो रिस्क से महरूम हो गए। चूंकि सूद का मामला आगे मामलात में आना है, तो भी इसको ज़कात के वर्सेस में समझ लीजिए। ज़कात का मामला इज़ अ नेचुरल वे। शहर में, मुल्क में हर तरह के लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। अगर ये मनी साइकिल सही हो, बल्कि मेरा बहुत दिल करता है कि हम सिर्फ मनी मैटर्स पे एक सेमिनार रखें, और इट शुड बी अ वेरी एडवांस्ड। वाई? क्योंकि उसमें ज़कात भी आएगी, उशर भी आएगा, सूद भी आएगा, और उसमें व्हाट इस्लाम वांट्स अस टू डू विद आवर मनी। लोग बाद वक्त गिल्ट में चले जाते हैं, ओ हम अमीर हैं, हम गुनाहगार हैं, और बाज़ लोग लोगों को देख के कहते हैं हाय ये बहुत पैसा कमाते हैं, ये तो आग में जाएंगे। इट्स नॉट द मैटर। इस्लाम में माल कमाने में कोई गुनाह नहीं, जमा करने में सारे इश्यूज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप घर में फ्रूट लाएं, जितना मर्जी लाइए खाइए, लेकिन अगर फ्रूट पड़ा रहे फ्रिज में या बाहर, तो एक दिन बाद ख़राब होगा, दूसरे दिन गलेगा, तीसरे दिन कीड़े पड़ेंगे, चौथे दिन बदबू होगी। दिस इज़ मनी। मेरा ये दो मिसालों से आपको समझ आ गया मिजाज कि माल शुड बी रोटेट। रनिंग वाटर, रनिंग वाटर सारा दिन हमारे घर में रहता है, कोई खराबी नहीं होती, लेकिन स्टेगनेंट वाटर हो और उसमें मच्छर आएंगे, चींटियां आएंगी, क्या कुछ होगा। तो ज़कात की सबसे बड़ी हिकमत है रोटेशन ऑफ मनी, और ये सूरत हशर में कुरान में एक आयत के अंदर बहुत वाजे हमें मिलता है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि फजीलत क्या है, लिख लीजिए क्विकली कुछ पॉइंट्स, ताकि पॉइंट्स भी लिखने की आदत रहे आपको। और वो क्या है, नंबर एक, ज़कात एक इबादत है, सूरत मरियम 55। दूसरी बात, ज़कात देने से अल्लाह पर ईमान लाने का जायका नसीब होता है। कोई दे सकता है किसी को अपने माल में से जब तक अल्लाह पर ईमान ना हो? अबू दाऊद 1582। थर्ड थिंग, ज़कात माल में इजाफे का सबब बनती है, सूरत रोम 39। नंबर फोर, ज़कात माल को पाक करने का जरिया है, बुखारी 1404। और ज़कात गुनाहों का कफ़ारा है। सोचिए ज़रा कितना बड़ा फ़ायदा है ज़कात देने का, इसकी दलील बुखारी 1435। और ज़कात से रब का गज़ब दूर हो जाता है, यानी अल्लाह को हम पे कभी गुस्सा आया होता है, ज़कात निकलती है, अल्लाह का गज़ब ठंडा हो जाता है, तिर्मिज़ी 664। फिर ज़कात से माल में कमी नहीं आती, मुस्लिम 6592। और ज़कात देने वाला मुकर्रबीन के साथ होगा, सही अतरगीब 749। और ज़कात जन्नत में ले जाएगी, बुखारी 1397। और 10वां पॉइंट कि ज़कात मुआशरे के गरीब अफराद की किफालत का ज़रिया है, बुखारी 1395। क्या पता चला कि ज़कात देने से किसी भी सोसाइटी में बहुत सारी खैर होती है। 11th पॉइंट लिखिएगा, ज़कात से इंसान का नफ्स, खुदगर्जी, जुल्म, बददियानती और माल की मोहब्बत से पाक हो जाता है। सूरह तौबा 103। 12th पॉइंट, ज़कात से माल में बरकत होती है। सूरत बकरा 261 और मुस्लिम 2342। और अगली बात सुनकर तो कोई ऐसा एक नहीं रहेगा इंशाल्लाह जो कभी अपनी अगली पिछली ज़कात ना दे दे, कि ज़कात देने वालों के लिए फ़रिश्ते दुआएं करते हैं। लेनी है दुआएं फ़रिश्तों की। और रिवायत का हवाला नोट कीजिए, बुखारी 1442। और नेक्स्ट भी बहुत खूबसूरत है कि ज़कात देने वाले का माल क़यामत के दिन साया बनेगा। और वो कौन सा दिन होगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अर्श के साय के सिवा। और ये रिवायत जो ये मुस्नद अहमद 18207। और एक बात तो सुन लेंगे तो बस उछल ही पड़ेंगे, ज़कात देने वाले को अल्लाह ताला ख़जाना गैब से अता करते हैं। बुखारी की रिवायत का खुलासा 4682, यानी मिन हई सुला यहतसिब, जो ज़कात देता है ना अल्लाह ताला उसको वहाँ से मनी देता है जहाँ से वो सोचता नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि इतनी फजीलतों के बावजूद फिर क्यों नहीं देते लोग। आज आपको पता है कि उम्मत मुस्लिमा के अक्सर लोग ज़कात नहीं देते। किसी मुल्क की पावर्टी रेट, जॉबलेस रेट, गुरबत कितनी कब होती है जितना लोग ज़कात रोकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर और उम्र अज़ीज़ का दौर, इंशाल्लाह ये जो सिलसिला शुरू किया है अशरा मुबशरा का, ये आगे बढ़ेगा हमारा अल्लाह के हुक्म से। हम अगले दौर के शख्सियात तक भी आगे आएंगे अगले कोर्सेज में, कि ज़कात का माल ले ले के लोग फिरते थे और कोई लेने वाला नहीं था। आज टुडे 5th दिसंबर 2018 अगर वर्ल्ड ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट मुस्लिम्स को दी जाए, और कौन से मुस्लिम जो ये सारा पढ़े हुए हैं, सिर्फ एक साल लगेगा पूरी दुनिया से ये थर्ड वर्ल्ड, ये गरीब मुल्क अमीर का फ़र्क ख़त्म होगा। इसीलिए इस्लाम को नहीं आने देते। द बिगेस्ट फियर इज़ दैट अगर इस्लाम का निज़ाम दुनिया में लग गया तो मोनोपोलीज ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये सुपर सुप्रीम पावर सिस्टम। इस वक्त इतना बड़ा आप कह लीजिए कि टेररिज्म जो है वो मनी टेररिज्म है, कागज़ के नोटों पे मोहरें छाप कर एक को 100 की और एक को 200 की और एक को 50 की करते हैं, इस्लाम में ये मैटर नहीं। जब तक सारा कुछ दोबारा गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स पे नहीं जाएगा ये सिलसिला नहीं बढ़ेगा। तो बहरहाल ये तो एक बहुत दुखती रख गई, इस पर इस वक्त तो ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि ज़कात ना दें तो क्या होगा, ये सुन के तो खौफ आना ही है। और हम सब देखें कि उम्मत मुस्लिमा में आज ये बेअमली क्यों है कि जो ज़कात नहीं देता उसके साथ क्या होगा। पहली बात समझें कि ज़कात कोई क्यों नहीं देता। नंबर एक, इन्नल इंसान अले हुब्बिल खैरी लशदीद, सूरत आदियात, कि इंसान माल की मोहब्बत में बहुत शदीद है। और दूसरी बात कि इसको फ़र्ज़ी नहीं समझते। तीसरी बात गफलत। चौथी बात लापरवाही। सबसे बड़ी बात कंजूसी और बुखल है। ठीक है, ऐसे शख्स से ज़बरदस्ती ज़कात दिलवाई जाएगी अगर वो किसी मुस्लिम मुल्क में रहता है, अगर नहीं देगा तो उससे जिहाद किया जाएगा, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक ने किया। सूरह तौबा 11 और बुखारी 1400 को नोट कर लीजिए, हज़रत अबू बकर की मिसाल हम सब के लिए मिसले राह है। सवाल पैदा होता है गुनाह क्या होगा। नंबर एक, ज़कात का माल क़्यामत के दिन आग की तख्तियाँ बनाकर ना देने वाले के माथे, पहलू और पुश्तों पे चिपकाया जाएगा। नहीं समझ आया तो सिर्फ़ सूरत तौबा की आयत 35-34 का तर्जुमा जाके देखिए, वल्लज़ीना यक्नज़ूना ज़हबा वल फिद्दता वला युन्फिकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, कि वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, उनके माल कंस बन जाते हैं। यानी वो माल जिस पे ज़कात ना दी जाए उसको कंस कहा जाता है। और होगा क्या, फ़तुकवा बिहा जिबाहुहुम। तुकवा कहते हैं अरबी में स्त्री को, जैसे स्त्री कहीं लगाकर चिपकाएं और उसके निशान बने, इस तरह स्लेट्स बनाकर सोना चांदी माल उनको चिपकाया जाएगा। दूसरी वईद नोट कीजिएगा, माले ज़कात गंजे नाग की शक्ल में डसेगा। गंजा नाग क्या होता है, कोबरा। इतना जहरीला कि उसके अपने बाल उसके जहर की वजह से ख़त्म हो चुके। ये बुखारी की रिवायत है 1403। तीसरी दलील सुनकर भी हाथ कांपने चाहिए कि ज़कात न देने वाले के अजाब के लिए, सोचिए मैंने जो कहा इसको गौर करें, जो ज़कात नहीं दे रहा अल्लाह उसके लिए क्या तैयार कर रहा है, जहन्नुम में आग की चट्टानें गर्म की जा रही हैं, यानी आग की चट्टानों से उसको दागा जाएगा। सही मुस्लिम 2290 उसका ये खुलासा है। और जो कौम ज़कात को रोक लेती है अल्लाह ताला इसको कहत में मुबतला कर देता है। सही तरगीब 763। इसके बाद भी कोई है जो ज़कात ना दे? अल्लाह अकबर। अब सवाल पैदा होता है कि ज़कात ना देने के बारे में इतनी वाइद है फिर क्यों नहीं देते? आज पाकिस्तान कहीं मैं नाम ले सकती हूँ, बस बाकियों को तो हम नहीं कहते, अपने के नाम ले सकते हैं, हमारे मुल्क के 5% लोग भी ज़कात नहीं देते टैक्स ना देने की तरह। बिलीव मी, हम एक तरफ हुकूमतों से चोरियां करते हैं और एक तरफ अल्लाह के हक को तोड़ते हैं। ये जो गरीब सड़क पर रुल रहे ना, और जो यतीम बच्चे फिर रहे हैं और पाँव में जूता भी नहीं, और दूसरी तरफ यूं फर्राटे भरती हुई गाड़ियां गुजरती हैं, 10-10 लाख की और करोड़ों की गाड़ियां, और दूसरी तरफ टूटी हुई साइकिल पे भी रस्सियां बांधी हुई हैं लोगों ने, कभी आप बताइए ये मुस्लिम मुल्क में हो सकता है? आपको किसी मुल्क के मुस्लिम होने ना होने के लिए उसकी मस्जिदों में बैठने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता? मुस्लिम मुल्क वो होते हैं जहाँ जाएं तो खुशहाली का दौर दौरा। एक हाकिम थे, मुसलमान हुक्मरान थे, उनका दौर था, हर हुक्मरान की तरह उमाल, उमाल कहते हैं अमले से, वर्कर्स, ज़कात को जमा करने वाले, आगे आएगा आमिलीन ज़कात। तो जब वो सारे वापस आए हुक्मरान से कहने लगे कि इतना माल ज़कात का जमा हो गया है, समझ नहीं आ रहा किसको दें, एक एक टर्म बोलते हैं, जो गरीबों में बांट दो। कहने लगे आपके मुल्क में गरीब है ही कौन, मुफलिसों में बांट दो, इस पे डाल दो, उस पे। हर मद में उन्होंने कहा बादशाह सलामत या खलीफा ए मुस्लिमीन, किसी टर्म में ज़रूरत नहीं है माल की। कहा अच्छा जाओ फिर इस माले ज़कात से अनाज खरीदो, दाना खरीदो और दूर पहाड़ों पे जाके डालो, परिंदे खा जाएंगे। दैट इज़ द क्लाइमैक्स। कभी भी गरीब मुल्क गरीब नहीं रहेंगे। आज पूरी दुनिया में जो एक अजीब सा ताफुन फैला हुआ है ना, उसकी वजह ज़कात का रोक देना है। तो आप देखिए दुनिया में आज सजा पा रहे हैं तो आखिरत में तो क्या होगा? क्वेश्चन एक लिख लीजिए, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि ज़कात कब वाजिब होती है। नंबर एक, शख्स मुस्लिम हो, यानी पहली शर्त है इस्लाम। सही बुखारी 1458। नंबर टू, आज़ाद, यानी ग़ुलाम पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नंबर थ्री, नसाब को पहुंच जाए। व्हाट इज़ द नसाब, ये नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। बुखारी 1459 और मुस्लिम 979। फोर्थ थिंग, मलकियत होना, यानी यू आर ओनर ऑफ दैट मनी। सूरह तौबा 103 और जारियात 19। पांचवी शर्त क्या है वाजिब होने की? ज़मीनी पैदावार के अलावा बाकी चीज़ों पर एक साल गुजर जाए। दिस इज़ अ क्वेश्चन। हर माल पे ज़कात नहीं है, लुक एट दिस। आप जिस मुल्क में भी रह रहे हैं इस वक्त, आप अगर अमेरिका में हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है यूके से सुन रहे हैं, और इसी तरह सिर्फ यूरोप ही की बात कर लूँ, पेरिस से और नॉर्वे से अगर सुनता है, पूरी दुनिया में क्या सिस्टम है? यू आर पेइंग टैक्स ऑन योर इनकम। आपका अमेरिका में जब पे चेक आता है तो ऑलरेडी उसमें से टैक्स कटता है। इस्लाम ये जुल्म नहीं करता। इस्लाम में देर इज़ नो टैक्स, नो जिजिया, नो कह लीजिए कि ज़कात ऑन इनकम। करोड़ों कमाए, ऑल इज़ योर्स। ना तो इसमें सोशलिज्म है ना कम्युनिज्म है कि जो कमाओ वो हुकूमत का, या कुछ भी नहीं है। हाँ, इस्लाम में ये शर्त बहुत अहम है, वो माल वो चीज़ जो आपके पास एक साल गुजर जाए। लेकिन जो ज़मीनों पे काम करते हैं, यानी जो काश्तकारी करते हैं, और एक ख़ास नाम जहन में आ रहा है, ज़मींदारी है, मज़ारे कह लीजिए, या जो भी, यानी ज़मीन से फसल उगती है, उनके लिए शर्त साल की नहीं, क्या है, हर फसल पे। जब भी फसल आएगी तो ज़मीन पे अगर पानी आप खुद दे रहे हैं पैसों का तो 20%, और अगर पानी नेचुरल है, पानी का कोई ख़र्चा नहीं है बारिशों से, तो 10वां हिस्सा, उसको उशर कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पाँचवीं शर्त है। छठी चीज़ क्या है? माल का फर्दे वाहद की मलकियत में होना, यानी मीन वही बात है कि अगर वो कंपनी है, वो किसी शख्स के, हर बंदे को अपने अपने माल के ऊपर ज़कात देनी होगी. और अगली बात नोट करें कि वो मनी जो किसी कॉमन कॉज के लिए, इज्तमाई कॉज के लिए है, मसलन मस्जिद, मदरसा, स्कूल, गवर्नमेंट ने अपने कोई फंड्स के लिए रखे हैं, उस पर भी नहीं है. वो तो एक कॉमन कॉज है ना. यानी आप कह लीजिए कि मिसाल देती हूँ कि आपका ये स्कूल है, अगर इस स्कूल के पास कुछ सेविंग्स हैं कि फ्यूचर में अल्लाह ताला आपको कोई बड़ी जगह दे दे, या कोई भी मकसद नियत है, कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए रखा हुआ है, तो वो जितनी देर मर्जी पड़ा रहे उस पर ज़कात नहीं, बल्कि उस पर ज़कात दी जाती है. देखिए इस्लाम का मिजाज देखिए कितना खूबसूरत है. ठीक है, फिर इसी तरह वो माल जो ऑलरेडी सोशल वेलफेयर के लिए, फ़कीरों मस्कीनों के लिए और रिफाही कामों के लिए, उस पर भी ज़कात नहीं होती. फिर माल बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो, ये भी शर्त है. जो कमा रहे हैं वो सारे ही खर्च हो रहा है, सारी ज़िंदगी ज़कात ना दें. आप कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ज़कात बोले नहीं दी. क्यों? अस्तग़फिरुल्लाह, साल तो बड़ा लंबा था. आपको तो नमाज में याद आ गया कि घर में एक सोने की डली रह गई है, जल्दी से नमाज पढ़ के सलाम फेरी तो चले गए. साहबा हैरान हुए कि अल्लाह के नबी तो जिक्र अस्कार करते हैं, फिर उठते हैं. का असल में वो एक घर में सोने की डली थी, वो नमाज में याद आ गई कि वो पड़ी हुई है, उसको सदका करो. अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे. ये दिल का कंज है, दिल का बोझ है, और इसी ने कईयों को आज जॉबलेस रखा हुआ है. तो बहरहाल ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो. फिर अगली बात बड़ी अहम है, हराम जरिए से ना कमाया हो. ये बात कहेंगे, अच्छा हराम से जो कमा रहे वो ज़कात से फ्री है, ओ वेरी गुड, वेल डन. नहीं, बकरा 267, और जिसके पास कोई कर्ज है उसको वो सारा कर्ज पहले दूर करना होगा, फिर आगे चलेगा. तो बाकी बात देख लीजिए कि ज़कात, माल दिया तो तभी है ना, कोई ज्यादती नहीं है. किन चीज़ों पे ज़कात होगी? हर जो भी चीज़ आपकी सेलेबल है, सोना चांदी जेवरात नकदी, ज़मींदारी है तो ज़रूरी चीज़ें, अनाज फल सब्जियाँ, कुछ जानवरों का काम करता है यानी मीन भेड़ बकरियाँ पालते हैं तो उन पे होगी, तिजारत करते हैं तो माले तिजारत. अब अगर उधर कुर्सियाँ मेज़ पड़े हुए हैं वो तो नहीं बिकने, उस पे नहीं होगी वो चीज़ जो सेलेबल आइटम है. बात वाज़े? इसी तरह माइंस, किसी ने ज़मीन ली उसके अंदर से सोने की कान निकल आई, माइंस है, उस पे भी है, बुखारी की रिवायत भी है इसमें. और इसी तरह से सूरह बकरा 267. सारी बात का खुलासा क्या है कि ज़कात का नसाब क्या है? देखिए फिकी बातों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सीधे सीधे अहकामात मौजूद हैं अल्लाह के हुक्म से. इसको पढ़ते पढ़ाते वक्त आप ये सोचिए कि इस्लाम इतनी इची बिची का ख्याल रखता है. तो हम सब ने शुरू से एक जुमला सुना हुआ, 7.5 तोले सोना. ठीक है, उसी के इक्विवेलेंट यानी 7.5 तोले कितने ग्राम होता है? 85 ग्राम. आपके पास अगर अपना पर्सनल गोल्ड है, किसी भी सूरत में कहीं से मिला, आप उसको अगर दीनार में करें तो ये 20 दीनार बनते थे उस दौर में. ठीक है, तो आज अगर आप में से किसी के पास 85 ग्राम है, तो मेरे हाल इतनी तो एक की चूड़ियाँ ही हो जाती होंगी. जो दुल्हन को सेट पहनाया जाता है वो तो 100 200 300 ग्राम से भी ऊपर के होते हैं. तो बहरहाल वो औरत खुद देगी, कोई दूसरा नहीं देगा, उसको खुद देना होगा. ठीक है, इसी तरह चांदी की सूरत में होगा तो फिर 618 ग्राम और 52.5 तोले, जो भी आपके पास टर्म आपको इजी हो उस पे दिया जाएगा. कैसे दिया जाएगा? उसकी वर्क की कीमत निकाली जाएगी और उसका 2.5% दिया जाएगा. बहुत इजी है, ज़रा लिखिए तो सही. $100 है आपके पास, उसमें से 2.5 डॉलर देने मुश्किल के आसान? सच बताइए, कितने की आती है ब्रेड? या यहाँ $2.5 का क्या आता है, कोई आप में से बता दे. ब्रेड आ जाती होगी, एक छोटी सी दूध की बॉटल आ जाती है 2.5 की. आप लोग बताएं जो सारा दिन ग्रोसरियों के पीछे भागते रहते हैं, सच बताएं, $2.5 इस्तेमाल करने मुश्किल लगते हैं? 100 है आपकी जेब में और 2.5 किसी पे लगा सकते हैं? 2.5 आप कहेंगे हम तो 25 लगा दें, लगाते हैं ना. तो बात बताइए, ज़कात मुश्किल है क्या? अल्लाह ये नहीं कह सकता था कि 97.5 मेरे, तो 2.5 तुम रख लो अपने खर्चों के लिए. जब 2.5 नहीं देते तो फिर अगला कहाँ देंगे? याद रखिए, जो ज़कात देता है वो सदका भी खुशी से देगा, और जो ज़कात नहीं देते और सवाल पूछते हैं इस पे ज़कात लगती, उस रिश्तेदार को दे, बहन भाइयों को दे, माँ को दे, तो बाकी 97 किसके लिए? तो बहरहाल इसके ऊपर अपने दिल से पूछने की ज़रूरत है. ये बहुत ही अहम सवाल है। डायमंड्स के ऊपर क्या है, खजानों पे क्या है, जानवर पे एक एक चीज लिखी हुई है। यानी आप इन चीज़ों को पढ़ते पढ़ाते हुए हैरान होते हैं। इतनी उम्र के इतने ऊँट, यानी 5 से कम ऊँटों पर ज़कात नहीं है, किस उम्र के कितने ऊँट होंगे? सुभान अल्लाह, आपके 5 ऊँट हैं या उससे कम कोई ज़कात नहीं है। 5 से 9 ऊँट हैं तो आपको एक बकरी ज़कात में देनी पड़ेगी। ये जमा तफरी किसने किसको सिखाई? जी अल्लाह ने सिखाई है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला बारीकियों पे देखता है। आप खजूरों का काम करते हैं, आप शहद का काम करते हैं, वल्लाह ही ये सब कुछ हदीस की किताबों में लिखा हुआ है मनोअन। तो इससे समझिए कि इल्म की कितनी अहमियत है, और हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि अपने सारे एसेट्स को देखकर, किसी के साथ हिसाब लगाकर उसकी ज़कात का हिसाब रखें। इसलिए कि ज़्यादा दे दें आप तो इट्स ओके, लेकिन अगर एक बाल बराबर चीज़ की भी ज़कात अगर ना दे सके तो बहुत मुश्किल होगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कई इसके रूप है, माल है नहीं, किसी को कर्ज दिया हुआ, क्या करें। एवरीथिंग आप इस डिटेल से जो दलाइल है इस किताब को गो थ्रू करेंगे, इंशाल्लाह आपको उस बुक में से बहुत कुछ मिलेगा। जिस घर में रहते हैं उस पर ज़कात है? नहीं है। ठीक है, जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ज़कात है? नहीं है। जो कपड़े पहनते हैं, बर्तन हैं, उस पर ज़कात है? नहीं है। कर्ज में दी हुई रकम पर ज़कात है? जी है। कैसे दें? रकम तो पास नहीं है, और पैसों में से दे दें, या जब कर्ज वापस आएगा तो उसमें से हिसाब लगाकर उतने साल की ज़कात दे देंगे। फिर इसी तरह से औरत अपने माल की ज़कात खुद देगी या उसका शौहर देगा? बेचारा शौहर क्यों दे? आप खुद देंगे। कहाँ से दें? क्वेश्चन। अपनी अंगूठी बेचिए और अपने पैसों पे ज़कात दे दीजिए। ठीक है, क्या वक्त से पहले ज़कात दी जा सकती है? 2 साल पहले भी दी जा सकती है। ये बुखारी की रिवायत है 1468। कोई इज्तिमाई कॉज है, आप कहते हैं और तो नहीं देना ज़कात दूंगी, आप ज़कात पिछली दे चुके, अगली दे दीजिए, इट्स पॉसिबल वक्त से पहले। अब आप कहेंगे पता नहीं वो साल गुजरने तक वो माल ही ख़त्म हो जाए, तो फिर वापस ले लीजिएगा। बात समझ गए? यानी होप दी बेस्ट करते हुए आप आगे वाली देर और हिसाब करते रहे, और एंड पे फिर अपना पूरा मामला जो उसको कर ले। फिर इसी तरह से कुछ चीज़ों पे ज़कात नहीं होती, ये भी सारी चीज़ों को इस वक्त डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ इस वक्त मेरे आपके कि दें किसको, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सीधा सा उसका अगर एक जुमले का जवाब लिखवा दूंगी ना तो बात पूरी है, और वो क्या है कि ये काम गवर्नमेंट का है। जहाँ आइडियल कंडीशंस होंगे, जैसे यहाँ इन मुल्कों में टैक्स का निज़ाम है, आपको किसी को जाके तो नहीं कहना पड़ता मुझसे टैक्स ले लो, वो खुद ही ले लेते हैं ना। मुस्लिम हुकूमत में इतना डेवलप्ड किस्म का सिस्टम होगा, जहाँ 1 महीना चूज़ किया जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन बना के लिख लीजिए कि क्या ज़रूरी है कि ज़कात रमज़ान में ही दी जाए? कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कभी भी दे दिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन करना क्या होता है? आप दे देंगे हुकूमत को, दैट्स इट, दैट इज़ द आइडियल थिंग। और हुकूमत सिंसियर है, मुखलिस है, उसको पता है कि हमने सारे मुल्क के निज़ाम चलाने हैं, तो वो अच्छे तरीके से उसको लेगी, जो गरीबों का हक है उनको देगी, फी सबीलिल्लाह पे लगाएगी, जो भी मसारफ हैं। आप कुरान में एक आयत बस लिख लें और आपको ये ज़कात के सारे मसारफ मिल जाएंगे, और वो आयत है सूरह तौबा 60, इन्नमस सदकात लिल फुकराई वल मसाकीनी वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम वफिर रिकाबी वल गारमीन वफी सबीलिल्लाह वबन सबील फरीदत मिन अल्लाह। ये लफ्ज़ फरीदा से पता चलता है कि यहाँ फ़र्ज़ सदक़ात यानी ज़कात हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, यानी सदक़ात तो अब लिख लीजिए, मसारिफ यानी कहाँ किस पे ज़कात लगती है किस पे नहीं लगती। तो नंबर एक फ़कीर, फ़कर जिसकी कमर ही टूट चुकी है। आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा फ़कीर वो है जो गनी ना हो, का गनी कौन है? जिसके पास 50 दिरहम हो या इसके बराबर सोना। ये अबू दाऊद की रिवायत है 1432। फ़कीर से मुराद लिखिए माजूर, मुस्तकिल बीमार, बेचारे कह लीजिए कि हमेशा के बिस्तर पे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनके, आमदन थोड़ी है, बच्चे ज़्यादा हैं, ये सारे फ़कीर में आएंगे। ये फर्स्ट टर्म है, तो इस टर्म को देख लीजिए, हैंड टू माउथ, जिनको कहें कि बेचारे उनको मांगना पड़ता है। याद रखिए फ़करा से मुराद प्रोफेशनल बेगर्स नहीं है, फ़कीर के अंदर समझ आ गए बात। सेकेंड थिंग मसाकीन, वो लोग जो फ़कीर से ज़्यादा मुख्ताज और बेबस हैं, लेकिन इज़्ज़त नफ्स की वजह से सवाल नहीं करते। हमारे यहाँ इनको कहते हैं सफ़ेदपोश लोग, ये सही मुस्लिम 2393 है। और इनमें वो लोग सरे फहरिस्त हैं, यानी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, जो ख़ुद को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ कर दें, इसकी रज़ा के लिए अपना घर बार अपना कारोबार छोड़ें और लोगों के सामने सवाल न करें। ये बकरा 273 में मौजूद है। यानी आप देखिए, आज भी हमारी कई मस्जिदें क्यों इस तरह ज़बूं खाली का शिकार है कि लोग फुल टाइम उसको टाइम नहीं दे पाते, और $2,000 रख कर कोई इमाम नहीं रखा जा सकता बिलफर्ज। तो फिर वहाँ ऐसे लोग बेचारे जो अल्लाह के डर से ना वक्त लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी दिया जाएगा। थर्ड थिंग है आमिलीन ज़कात। आमिल कौन है? वर्कर्स, आमला से अहलकार। गवर्नमेंट जब ये काम करेगी तो एक पूरा फील्ड होगा, कलेक्शन होगी, वहाँ अकाउंट्स वाले लोग होंगे, वसूल करना लिखना, अकाउंटेंट्स होंगे, फिर किसको देना है, तो इन सब की तनख्वाहें भी इससे आ जाएंगी। ये बुखारी की रिवायत 7163 और मुस्लिम 2405 है। फोर्थ कैटेगरी है मुअल्लफतिल कुलूब, तालीफ़ कल्ब, टू सॉफ्टन द हार्ट्स, इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं आप, तो वो लोग नंबर एक जो इस्लाम की तरफ माइल है और उम्मीद है कि अगर उसको कुछ माल दे दिया जाए तो उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत होगी, ठीक है। और नंबर दो इसमें वो लोग हैं जिनको इस्लाम पर मजबूती से कायम रखने के लिए मदद की ज़रूरत है। रिवर्ट्स ऑलरेडी मुस्लिम हो चुके हैं, क्योंकि बेचारे ऐसे लोगों को देखिए कि उनका सारा घराना उनको छोड़ चुका होता है, तो फिर इधर से मदद की जाएगी। तीसरे वो काफिर जिनको मदद देने की सूरत में वो मुसलमानों पे हमला नहीं करेंगे, यानी बस उनको एक तरह से खामोश करा दिया। फिर इसी तरह से मिशनरीज, वो मिशनरीज जो अपने बातिल अकायद को फैला रहे हैं, अगर उनको कुछ माल दे दिया जाए तो वो इस काम से रुक जाएं। नंबर फाइव फिर रिकाब, गर्दन छुड़ाना, ये कौन है? बुखारी की रिवायत नोट कीजिए 49, इब्ने अब्बास से रिवायत है, ज़कात के माल से ग़ुलाम आज़ाद करने में कोई हर्ज नहीं। आज ग़ुलाम नहीं है तो कैदी, बेगुनाह कैदी जेलों में पड़े हुए हैं, कोई उनका रैंसम दे दीजिए, ठीक है, दुश्मनों के पास चला गया तो उसकी मदद की जा सकती है। नंबर सिक्स गारेमीन, मखरूज, क्या कहेंगे इसको? इन डेप्ट, तो फिर तो सब कोई दे दें, कौन है जो डेप्ट में नहीं है? ये है वो संगीन इशू जिस पे बात नहीं करूँगी, बस इशारा कर देती हूँ कि आज के दौर में तो ख्वाहिशों के नाम पे कर्ज है मजबूरी कहकर। हालांकि गारमीन वो शख्स जो अपने घर के खर्च पूरा करने में मकरूज हो गया। नंबर दो गारिम कौन है? लिख लीजिए, वो शख्स जिसका कारोबार ख़त्म हो गया, आग लग गई या चोरी हो गई, कर्जे में आ गया। तीसरा वो शख्स जो बीमार पड़ गया, इलाज के लिए पैसे नहीं तो मकरूज हो गया। और चौथा शख्स गारमीन में वो आता है दो लोगों में सुलह कराने के लिए जमानत दी लेकिन तावान की अदायगी उस पर ही पड़ गई। बात समझ गए? किसी की गारंटी ले ली कि मैं ये पैसे दिलवा दूंगा लेकिन बाद में वो जिसने देने थे वो नहीं दे रहा, तो ये देगा ना। यानी जो किसी भी वजह से किसी ऐसे हालात में चला गया जिसमें आया, तो याद रखिए कि इसमें वो कर्जे और वो लोन नहीं है जिसको आप बिजनेस लोन कहते हैं, जिसको होम लोन कहते हैं, जिसको स्टडी लोन्स कहते हैं, ये एक अलग इशू है। नेक्स्ट थिंग है फी सबीलिल्लाह। वल्लाही ये इतनी लंबी मद है, मैं सिर्फ चंद जुमले बोल देती हूँ, पांच डिफरेंट चीज़ें। नंबर एक फी सबीलिल्लाह, तमाम लोग जो दुनिया में इस्लाम के गलबे के लिए किसी भी तरीके से जिहाद और क़िताल के अमल में मसरूफ़ हैं, ये तो इसका सबसे कॉमन मीनिंग है ना, मुजाहिदीन। अबू दाऊद की रिवायत 1635। हज़रत उमर कहते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद जिहाद और मुजाहिद हैं, मौता इमाम मालिक की रिवायत है 174। फिर इसी तरह सामान जंग खरीदने के लिए, दिफा के लिए, यानी वेपन्स लेने हैं, उसमें गवर्नमेंट ज़कात का माल इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट थिंग हज भी फ़ी सबीलिल्लाह में है, मुस्नद अहमद की रिवायत 40 जिल्द 6 है, बुखारी में भी मौजूद है किताबुल ज़कात 49। अब ये कैसे आप कहते हैं हज तो फर्जी तब होता है? अभी आगे कल बात करेंगे इंशाल्लाह हज पे हम लोग, अल्लाह ने चाहा तो देखिए जिस पे हज फर्ज था लेकिन उसने नहीं किया और अब मकरूज हो गया, हिदायत तब मिली है तो अब उसका हज भी फिर इस पैसे से कराया जाता है। फोर्थ थिंग क्या है? दीनी इदारों पर जहाँ लोग तालीम हासिल करते हैं, इनका हक दुगना है क्योंकि वो फ़ुकरा और मसाकीन में से भी हैं। बहुत सारे गरीब लोग नबी सल्लम के पास असाबे सुफा की सूरत में थे, बास गरीब नहीं होते थे लेकिन दूसरे मुल्कों से आए होते थे, तो उनके खर्च पानी, अब वो अगर उस जगहों में आकर काम जॉब शुरू कर देते तो फिर वो दीन कैसे सीखते। तो दीन की तालीम जिसका मकसद दीन का गलबा जहनी तौर पे हो, इस्लाम को फैलाने में, इसमें आप दावा मटीरियल कह लीजिए या इल्म की नशर व इशात पर फैलाना, ये भी फ़ी सबीलिल्लाह में है। और फिर कोई भी ऐसी मत तहरीर की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, वेबसाइट मेकिंग, यानी हर वो चीज़ जिसका मकसद अल्लाह के दीन को फैलाना हो उसमें ये लग सकता है। मैं कहती हूँ सिर्फ हम मुसलमान आज अपनी ज़कात को फोकस करके इस्लाम की तबलीग और नशर व इशात पे लगा लें तो लोगों के आगे तो हाथ ना फैलाना पड़े। आज ये दुख की सदमे की बात है, वो मदूद वो चीज़ें जिस पे सारे लगाने को तैयार हैं उस पे फिर मुसलमान भी जाके लगाएगा, और इस्लाम और कुरान पे तो कोई नहीं लगाएगा ना। वो चीज़ इस्लाम ने इस मद में डाल दी। और आखिरी चीज़ क्या है, इब्ने सबील, मुसाफिर। वो मुसाफिर जो चाहे अपने खानदान अपने घर में पैसे वाला क्यों ना हो लेकिन सफ़र के दौरान मकरूज हो गया। देखिए पहले कार्ड्स नहीं होते थे, डेबिट कार्ड और फुलाम फुलाम इतनी चीज़ें थी, तो किसी को सफ़र के दौरान पैसों की ज़रूरत पड़ गई, माले ज़कात से उसकी मदद की जा सकती है। किसको नहीं दे सकते, चांद लफ्ज़ लिख लीजिए, नंबर एक आले नबी को, यानी डायरेक्ट जिनका नसब नबी सल्लम से, बनु हाशिम से, आले अली, आले अब्बास, आले अकील, जाफ़र, हारिस, यानी डायरेक्ट उनसे ताल्लुक़ हो। दूसरी बात मालदार से, सिवाय उनके जिनका तذکرہ हो गया, यदि जो ख़ुद मनी अपनी अफोर्ड कर सकता है के लिए नहीं है। फिर इसी तरह से वालदैन, माँ बाप औलाद को नहीं दे सकते। और रिफाही काम ऐसे जिसमें आप देखिए कि मसलन, अब नाम नहीं मैं लेती लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे इस साल लोग जो हैं वो अपनी ज़कात भी लगा रहे हैं, तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो काम जो हुकूमत की जिम्मेदारी है उस पे आप ज़कात नहीं लगाएंगे। बात समझ आ गई? यानी ज़कात देना या लेना लगाना ये एक पूरा एक इशू है। फिर इसी तरह से आप याद रखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम समझ नहीं पाते, हमें ऐसे लग जाता है कि ये चीज़ें शायद मोर देन एनफ वाली बात है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमारा हक हक की जगह पे लगे, ऐसा ना हो कि हम अपनी मासियों को ज़कात के पैसे बेलों की सूरत में देते रहें और वो बहुत खुश हों कि बाजी बड़ी मुखलस है, बाजी बड़ा पैसा देती है, और पता चले बाजी अपनी ज़कात सारा साल मासियों को बांटती रहती है। दिस इज़ नॉट द वे। कई लोग गरीब रिश्तेदारों को बड़ी बड़ी फ्रिजों और टीवियों की सूरत में तहाइफ देते हैं बेटियों की शादी पे, अब वो बेचारे बोझल होते हैं, हाय बच्ची की शादी पे दिया, अंदर खाते पता चला ज़कात दी है। देखिए इस पे मैं ज़्यादा शिद्दत बरतती नहीं किसी भी चीज़ में, लेकिन एक जुमले में इसको समअप कर देती हूँ, जिसको आप ज़कात दे रहे हैं वो ये ना समझे कि आप तोहफा दे रहे हैं और कल वो भी उसको पलटाने की गम में हो, ठीक है? तो बाकी अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे और बेहतरीन तरीके पे इस चीज़ को रखिए। और सेहतमंद और कमाने के काबिल शख्स के ऊपर ज़कात नहीं दी जा सकती, गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती, फासिक फाजर और बेदती को ज़कात नहीं दी जा सकती। मैं सिर्फ़ एक फ़तवा सुना देती हूँ, शायद पहला फ़तवा सुनाने लगी हूँ इधर आपको इस पूरी सेंस में, और वो इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह का नाम है। कहते हैं कि बेनमाज शख्स से, यानी आप क्वेश्चन लिखें क्या जो बेनमाजी है उसको ज़कात दे सकते हैं, सुन लीजिए, बेनमाज शख्स से नमाज पढ़ने का वादा लिया जाए, अगर वो नमाज की पाबंदी करे तो इसे ज़कात दी जाए, वरना नहीं। जब तक बेनमाज तौबा नहीं करता इसे ज़कात में से कुछ नहीं दिया जाएगा। ये फतावा इब्ने तैमिया जिल्द 25 87 पेज पे है। और सऊदी अरब की दायमी फतवा कौंसिल के मुताबिक जो ज़रूरतमंद शख्स नमाज नहीं पढ़ता इसे ज़कात देना जायज़ नहीं है। तब आप खुद देख लीजिए हम किस तरीके से आज अपने मुल्क में लोगों को नमाज की इतनी तरगीब नहीं दिलाते जितना हम उनके साथ दूसरी चीज़ों पे लेके चल रहे होते हैं। फिर इसमें वही सारी बहस है जिसको हम स्किप करते हैं, लेकिन जहाँ मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि बंदों में से किसी का हमने कुछ देना हो ना तो वो तो हमसे ले लेगा, है ना, तकाजा करेगा, कुछ नहीं होगा तो केस कर देगा, लेकिन जब हमने अल्लाह का देना हो और हम वो ना दें तो क्या होगा? ये आपके मेरे अपने बस में है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम अपने इन सारे फ़राइज़ से बेहतरीन अंदाज़ में सुरखरू हो सकें। यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। दो मेन टॉपिक जो हमारे इंशाल्लाह इस टॉपिक के वो कल होंगे, रोज़ा और हज। ज़कात का मौजू क्लियर है। 3-4 सेकंड खामोशी से मुहासबा करें, मैं भी आप भी, कि मेरे ऊपर कोई ज़कात का माल तो नहीं रहता। अल्लाह के नबी सल्लम के पास माँ बेटी आई, मोटे मोटे कड़े पहने हुए थे, कंगन। कहा, इसकी ज़कात देती हो? कहा, नहीं। जब से लिए नहीं दी? कहा, तब से लेकर हिसाब करो और दो। तो कहा अल्लाह के नबी, कौन हिसाब करे कितना है? कंगन उतार के आपको पकड़ाए कि इसको जहाँ मर्जी खपा दें। ये एहसास होता है ना। तो ऐसी चीज़ें कसरत का नहीं किल्लत का ज़रिया बनती हैं। अल्लाह ताला हमें सबको इससे बचा के रखे।